सोक्रेटिक आर शारिकली। जब आधे घंटे के मुसलसल इंतजार के बाद भी मेरे ड्राइवर और गाड़ी के आसार दूर दूर तक दिखाई न दिए, तो हमने सेंटर फॉर बायोएथिक्स एंड कल्चर तक पैदल जाने का फैसला कर लिया। हमारे बर्न सेंटर से ये दफ्तर चंद ही मिनट की मुसाफत पर वाक़ था और डॉक्टर मौजम से तयशुदा मुलाकात में अभी 10 मिनट बाकी थे। हम सब मेन गेट से निकलकर दाएं हाथ पर एक टूटी फूटी फुटपाथ पर चलने लगे। मेरे साथ स्वानजी मेडिकल स्कूल के वो 3 तालिबे इल्म थे जो 2 हफ्ते के मुतालियाती दौरे पर मेरे वार्ड से मुंसलिक थे। उनके इस मुख्तसर क्याम के दौरान सुपरवाइजर की हैसियत से मेरी ये भरपूर कोशिश थी कि मैं न सिर्फ उन्हें अपने वार्ड बल्कि इर्द गिर्द के ऐसे तमाम कामयाब इदारों से मुतारिफ करवाऊँ कि जिनकी शानदार कारकर्दगी का भरपूर तासुर लेकर वो अपने मुल्क बरतानिया को लौट सकें। डॉक्टर मौजम से आज की ये मुलाकात इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। सड़क पर ट्रैफिक हस्ब मामूल जोर शोर से रवा दवा था और चलते चलते गुफ्तगू का मौजू डॉक्टर मौजम और उनके कायम करदा इदारे सी बैक का मुख्तसर तारुफ था। वक्तन फवक्तन कोई तेज रफ्तार रिक्शा हमारे पास से गुजरता और उससे निकलने वाली वाशुगाफ आवाज के एहतराम में कुछ देर को गुफ्तगू का ये सिलसिला रुक जाता। सड़क के उस पार गर्ल्स कॉलेज की दीवार पर कोयले से लिखी हुई ये तहरीर थी, सफाई निस्फ ईमान है। और सड़क के इस तरफ चंद ही कदम के फासले पर इस तहरीर से बेनियाज और लाताल्लुक सिविल हस्पताल की ओपीडी के मेन गेट से जरा आगे कूड़े का एक पहाड़ नुमा अंबार था। मैंने दिल ही दिल में इस बात का शुक्र अदा किया कि ये तीनों तालिबे इल्म उर्दू पढ़ना नहीं जानते, वरना हमारे फिक्री और माशरती तजाद की ये झलक कोई खुशगवार तासुर न छोड़ती। मैंने मजीद एहतियात से काम लेते हुए और उनकी तवज्जो को मशगूल रखने के लिए गुफ्तगू के इस सिलसिले को मजीद तेज कर दिया। मैं उन्हें बता रहा था कि प्रोफेसर फरत मौजम मेडिकल एथिक्स के शोबे के हवाले से पाकिस्तान की एक जानी पहचानी और मुमताज शख्सियत हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद और अमेरिका में एक पीडियाट्रिक सर्जन की हैसियत से अपनी तालीम और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद वो कई बरसों तक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सर्जरी के शोबे की क़यादत करती रहीं और अपने करियर के उरूज पर इस अज़्म के साथ अमेरिका दोबारा रवाना हुईं कि वो मेडिकल एथिक्स के शोबे में पीएचडी करने के बाद दोबारा पाकिस्तान आकर अपने मुल्क में इस अहम शोबे का बाकायदा आगाज करेंगी। उनका अज़्म पुख्ता था और अब उनका कायम करदा इदारा उनकी कायदाना सलाहियतों और उनके साथियों की पुरखलूस और मुनज़्ज़म कोशिशों की वजह से मेडिकल एथिक्स के शोबे में साउथ ईस्ट एशिया का एक मुस्तनद इदारा है। जब हम ये गुफ्तगू करते हुए SIUT की वसीउ अरीज इमारत के मेन गेट से गुजर कर और मरीजों से भरे हुए हॉल के दरमियान से होते हुए लिफ्ट के जरिए से 5वीं मंजिल पर वाके उनके दफ्तर के सामने पहुंचे, तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, इसलिए कि मुलाकात के तयशुदा वक्त में अभी 1 मिनट बाकी था। मैं खुशकिस्मत हूं कि एक जूनियर कोलीग की हैसियत से मुझे प्रोफेसर मौजम की शफकत का सामना रहता है। वो आज भी बहुत तपाक से मिली। हेनरी और एलन और क्लेयर से उनके मेडिकल स्कूल के बारे में गुफ्तगू करती रहीं। चाय की तवाज़ो के साथ साथ उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली, उसकी तफसील पूछी, उन्हें सीबैक से मुतारिफ करवाया, उसके अगराज व मकासद बयान किए और उसमें मुनक्कद होने वाली सरगर्मियों के बारे में उन्हें बताया। अपने इदारे से निकलने वाले न्यूज़लेटर की कुछ जिल्दें उन्हें तोहफ़तन दीं और इस मुख्तसर मगर खुशगवार मुलाकात के अख्तिताम पर रुख्सत होते हुए मुझे याद दहानी कराने लगीं कि इस दफ़ा के सोक्रेटिक आर में ज़रूर आना। डॉक्टर मौजम का इदारा हर 2 महीने बाद एक मुज़ाकराती नशिस्त का एहतमाम करता है जिसमें अदब, इखलाकियात और दीगर माशरती मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाता है। मेरी खुशकस्मती है कि मैं इस नशिस्त के आगाज ही से इसमें शामिल रहा हूँ। उनके दफ्तर से बाहर आकर हमने वापसी के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरने का इंतखाब किया। हेनरी ने मुझसे सवाल किया, आपकी इस मुजाकराती नशिस्त को सोक्रेटिक आर क्यों कहा जाता है? हेनरी के किए हुए इस सवाल और उसकी वजाहत की तलाश में सीढ़ियां उतरते हुए मुझे कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं एक्रोपोलिस की पुरविकार इमारत की सीढ़ियों से कदम ब कदम नीचे उतर रहा हूँ, और मेरी नज़रों के सामने जीते जागते और चमकीली धूप से रोशन जैतून के दरख्तों से आरास्ता एथेंस के कूचाओ बाजार हैं, और कदीम यूनानी लिबास पहने हर उम्र के लोग आम और खास अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत में इधर से उधर रवां दवा हैं। इसी मसरूफ चौक के एक कोने में चंद लोगों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मजमा दिखाई देता है। इसमें मौजूद बेशतर लोग नौजवान हैं। ये सब लोग एक उम्र रसीदा मामूली शक्लो सूरत रखने वाले और आम लिबास पहने हुए एक शख्स को घेरे हुए हैं। इसके पैर जूतों से बेनियाज हैं, और अपने अंदाजो अतवार से ये एथेंस का एक आम सा शहरी दिखाई देता है। लेकिन इर्द गिर्द खड़े हुए नौजवानों के तर्ज तखातुब और नजरों में मौजूद एहतराम से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये बूढ़ा शख्स उनका उस्ताद मोहतरम है। ये सब लोग मुबाहिसे में मशगूल हैं, और इस मुबाहिसे का महवर और मरकज वो अजीबोगरीब सवालात हैं जो वक्तन फवक्तन ये बूढ़ा शख्स अपने इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों से करता है। मैं उसे नजर भर कर देखता हूँ और पहचान लेता हूँ। ये वो शख्स है कि जिसे बाज़ मौर्रखीन ने 2500 साला इंसानी तारीख में अब तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों में अक्लमंद तरीन आदमी करार दिया है। सोक्रेटिस का हुनर उसका वो मखसूस तर्ज मुबाहिसा है कि जिसके जरिए से दानिशमंदी को हासिल किया जा सकता है। सोक्रेटिस, जिसे उर्दू में सुकरात कहते हैं, 469 BC में एथेंस में पैदा हुआ। उसका बाप मुजस्मा साज था और उसकी माँ एक मिडवाइफ। वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसीलिए उसके बारे में जो कुछ भी मालूमात हमें मिलती हैं वो उसके शागिर्दों प्लेटो और जेनेफोन की तहरीरों के जरिए से हैं। ये पेपिरस पर लिखी हुई वो तहरीरें हैं जिसमें सोक्रेटिस और उसके शागिर्दों और दीगर लोगों के दरमियान होने वाले मुकालमात का तफसीली जिक्र है, और ये मुकालमात उसके अफकार व ख्यालात का भरपूर इजहार हैं। सोक्रेटिस की अजमत की सबसे बड़ी वजह उसका वो एहसास जिम्मेदारी है कि जिसके तहत वो एथेंस में बसने वाले तमाम लोगों और फिर अपनी फिक्र के हवाले से तमाम नस्ल इंसानी को इखलाकी और रूहानी तौर पर तवाना और बेदार रखने के लिए महसूस करता था। उसकी दानिशमंदी का इजहार आलिमों और हुक्मरान तबकों की महफिलों तक महदूद नहीं था, बल्कि वो एथेंस की गलियों में घूमने वाले आम लोगों से बात करता है। जैतून के दरख्तों के नीचे छाबड़ी लगाने वाले आम दुकानदारों से गुफ्तगू करता है। वो उनसे सवाल करता है, हुस्न क्या है, नेकी किसे कहते हैं, इंसाफ से तुम्हारी क्या मुराद है, और फिर इन सवालों के जवाबों की तलाश में और इस दानिशमंदाना सफर में वो उनके साथ साथ चलता है। लेकिन वो एक गैर अमली आदमी नहीं है, क्योंकि जब दुश्मन की फौजें एथेंस पर हमला आवर होती हैं तो वो भरपूर दाद शुजात देता है।